हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 9, 10 एंड 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंज रांतं अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त्वा। स्मरतव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चे। सर्वविद्धि निषेदास्यो एतयोरेव किंकर हाराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय। तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमः। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 9। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मा सुरभि यात्र शुचो व्येति व्येतुति वृषलात् भयम् मा रोदीरम्भ त्रंते खलाना महिषास्तरी मा सौरभे यात्र शुचो वेतुते वृषलात् भयम् मारोदीरंब भद्रं ते खलानां महिषास्तरी। शब्दार्थ मा सौरभे, मा मतलब मत नहीं, सौरभय यानी कि हे सुरभि पुत्र, जो परीक्षित महाराज हैं वो बेर को कह रहे हैं कि आप सुरभि के पुत्र हो। सुरभि उन गायों को बोलते हैं जो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में रहती हैं और उनको भगवान स्वयं चढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य है उन गायों का जो सुरभि के रूप में भगवान के साथ रहती हैं। तो जिस तरह से मनुष्य का स्वरूप भगवान से भगवान के जैसा है, भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा स्वरूप दिया है। मैन गॉड मैन मेट मैन, भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा स्वरूप प्रदान किया है। उसी तरह इस संसार में जितनी भी गायें हैं उन सबको सुरभि के जैसा ही स्वरूप प्रदान किया है। तो महाराज परीक्षित जो है वो बेल को कह रहे हैं क्योंकि आप भी सुरभि की ही संतान हो, इसलिए माँ सौरभेय अत्र शुचो, अत्र मतलब इस राज्य में, आप जब तक मेरे राज्य में हो तो आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इस राज्य में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, वो सब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनकी सुरक्षा, उनके सुख का, उनके अधिकार उनको प्राप्त हो उसका मैं ख्याल रखूं। तो जब तक आप मेरे राज्य में हो तो माँ आपको शोक नहीं करना है। वेतु होने दो ते तुम्हारा वृषलाद शूत्र द्वारा भयम, भयम मना भय का कारण, फिर तुम उस शूद्र के द्वारा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक तुम मेरे राज्य में हो। आपको माँ शुचो, शुचो मना शोक मत करो, तुम मेरे संरक्षण में हो। और माँ रोधीर अम्ब भद्रम ते, माँ रोधीर, रोधीर मतलब आप नहीं रो। अभी पहले बेल को बोला कि जब तक आप मेरे राज्य में हो तब तक शोक मत करो, और गौ माता क्योंकि रो रही थी तो उनको बोल रहे हैं माँ रोधीरा आप मत रोइए। अम्ब, अम्ब कहते हैं माँ को। महाराज परीक्षित ये दिखा रहे हैं कि जो गौ है वो हमारी माता के समान होती है, तो माता को जिस तरह हम कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते, उसी तरह गौ को दुखी देखता है जो प्राणी, वो भी नारकीय जीव है। जिस तरह से हम अपनी माता को कष्ट पहुंचाने के लिए हमें नरक में जाना पड़ेगा, उसी तरह अगर हम गौ को कष्ट पहुंचाएंगे तो भी हमें बहुत ज्यादा घनघोर जो नरक होते हैं उनकी सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए माता को शांत करते हुए परीक्षित महाराज कह रहे हैं माँ रोधीरम्ब भद्रम ते, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कल्याण होगा। और खलानाम मई शास्त्री, खलानाम यानी जितने भी ये खल हैं जो आपको आपको कष्ट पहुंचाते हैं, यानी शूद्र की ओर के ये जो कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति है, मैं यानी मेरे रहते जब तक मैं यहाँ पर हूँ, और जब तक शास्त्री मई शास्त्री जब तक मेरा शासन है, जब तक मेरा राज्य है, तो इन सारे जितने भी ईर्ष्यालु हैं, खल हैं, उन सब से मैं आपकी संरक्षण प्रदान करूंगा, आपका कल्याण होगा, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, और हे बेल आपको दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुवाद, हे सुरभि पुत्र अब तुम और शोक मत ना करो, तुम्हें इस निम्न जाति के शूद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं कि बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की संरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराजा परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। वास्तव में जितने भी प्राणी हैं वो तभी सुखी रह सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, तभी सुखी रह सकते हैं जब राजा जो है वो न्यायाधीश होना चाहिए। राजा जो परीक्षित महाराज जैसा राजा जब शासक होता है, जब राज्य को चलाता है, तब ही सब लोग सुखी हो सकते हैं, सारे पशु भी सुखी हो, क्योंकि राजा जानता है कि मेरी प्रजा खाली मनुष्य थोड़े हैं। इस राज्य में जो कोई भी रहते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, सब मेरी प्रजा है, तो मुझे सबका संरक्षण करना है। लेकिन आज का राजा मनुष्य, पशु तो बहुत दूर की बात है, पशुओं की संरक्षण प्रदान करना वो तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो जगह जगह पर मनुष्यों की हत्या होती है और आज का राजा उनको, उनके कष्टों को भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन एक वास्तविक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा के समस्त दुखों को दूर करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर उसे बहुत भयंकर दंड प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर महाराजा परीक्षित बता रहे हैं कि मैं जब तक मेरा राज्य है तब तक गौ और बैल को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। यही बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जैसे शासक द्वारा जब राज्य चलाया जाएगा तभी ही बैलों और गौओं को संरक्षण प्रदान होगा। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसीलिए संबोधित किया है क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। मारो धीरम भवद्रम थे, अम्ब बोला है ना, तो वो वास्तव में क्षत्रिय हैं और वास्तविक जो द्विज क्षत्रिय होते हैं, जो दीक्षित होते हैं, दूसरा जन्मदिन का होता है, तो वो जानते हैं कि हमारी सात माताएं, जैसे हमने पहले बताया कि गुरु पत्नी है, पृथ्वी है, गाय माता है और राजा की पत्नी है, अपनी सगी माता है, ये सब हमारी माता है, ये हमें शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से गौ भी हमारी माता होती है। तो महाराजा परीक्षित जैसे जो राजा होते हैं उनको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। इसी श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर राजाओं के विषय में, अभी देखो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनु वे प्राहु मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत, कि ये जो विद्या है वो पहले राजाओं को दी जाती थी। सारा जो ये होता था ना शास्त्र अध्ययन करना, जो शास्त्रों का जो भी ज्ञान होता था ना, सबसे पहले राजाओं को दिया जाता था, क्योंकि जब राजा को ज्ञान प्रदान कर दिया जाता था फिर आगे वो उसी ज्ञान के आधार पर जो है ना वो शासन करेंगे। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे ही होंगे जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब शास्त्रों के अनुसार अगर रूल्स एंड रेगुलेशन कोई राजा बनाता है तो जितनी भी प्रजा है उसको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो अगर राजा सही शिक्षित है ना तो प्रजा खुद ब खुद शिक्षित हो जाएगी, प्रजा खुद ब खुद धर्म करने लगेगी। जैसे राजा को पता है कि एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, समझो राजा को पता है तो वो रूल लगा देगा पूरे अपनी प्रजा में, जितना भी उसका शासन होगा, जो भी देश होगा उसमें ये रूल होगा कि कोई भी एकादशी के दिन अपने घर में अनाज नहीं पकाएगा। राजा को जब ज्ञान होगा तभी तो करेगा, राजा को पता होगा कि भाई अन्न मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो राजा रूल करेगा कि कहीं पर भी कसाई घर नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर के पशुओं का वध कर दिया जाएगा और फिर लोग जो है वो उसको परचेज करके पक्का के खाएंगे, ऐसा कोई रूल ही नहीं होगा, क्योंकि राजा ने इस तरह का परमिशन ही नहीं दी होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकेगा ना। लेकिन आजकल राजाओं को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, वो तो खुद पशुओं की तरह जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य करने से हमें अच्छा जन्म मिलेगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा, हम कौन से अपराध करेंगे, तो कुछ ज्ञान तो है ही नहीं, तो वो अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं। और जब राजा अपराधी हो जाता है तो सारी प्रजा भी अपराधी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे कि महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसीलिए संबोधित किया क्योंकि सभ्य द्विज क्षत्रिय थे। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ में रहती हैं और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप के आकार के होते हैं, उसी तरह सारी गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी होती हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो आश्चर्य पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को आश्रय प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य की तो रक्षा हो रही है, कोई मनुष्य को यदि सरेआम मारेगा या उसका खून कर देगा तो पुलिस आके उसको पकड़ लेगी, लेकिन वही मनुष्य उस माता को जो कि अपना दूध देकर मनुष्य को पालती है, उसको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, सरेआम कसाई घर में उसका गला काट दिया जाता है और उसको यूं लटका के उसको बेचा जाता है, उसको कोई भी सजा नहीं दी जाती है। उन असहाय पशुओं को संरक्षण प्रदान करने का कोई भी कानून नहीं है। महाराज परीक्षित तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्णतः अवगत थे और वे गौ बद्धक को सभी प्रकार से दंड देने के लिए तैयार रहते थे। वो कभी भी ऐसा राजा जो न्यायाधीश होता है वो कभी भी पशु वध नहीं स्वीकार करता अपने राज्य में, और पशुओं में भी जो गौ बद्धक होते हैं उनको तो सजाए मौत दी जाती है, उनको तो मार डालना चाहिए। तभी तो इन ऋषियों ने पूछा था कि ये महाराज परीक्षित ने ऐसा कैसा निर्णय किया। वो देख रहा था कि एक शूद्र गाय और बैल को प्रहार कर रहा था और उसने केवल दंड दिया, मार क्यों नहीं डाला उसको। तो यही बात यहाँ पर बताया श्री प्रभुपाद जी के पांडवों के राज्य में ऐसा होता था कि अगर कोई गौ को मारता था या उनको कोई कष्ट पहुंचाता था तो उसको मार दिया जाता था। तो उनको मारने के लिए भी, मृत्यु दंड देने के लिए भी वो तैयार होते थे। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी के जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल था। कभी कभी गौ रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा अनुकूल कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को संरक्षण प्रदान की को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती। यानी कि अनुकूल नहीं है कानून, जो गवर्नमेंट के जो राजा हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि किस तरह से हमें पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि उन पशुओं को संरक्षण प्रदान नहीं होता है। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराजा परीक्षित की भांति उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। ये हम सबका कर्तव्य है, मानव समाज का कर्तव्य है कि वो क्या करे, इन पशुओं को स्पेशली गौ और बैल को संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये भगवान स्वयं आए हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय से। वास्तव में भगवान गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि धर्म तभी टिकता है जब गौ और ब्राह्मण जो है उनकी सुरक्षा हो। गौ का दूध पीने से जीव के जो बुद्धि के जो तत्व होते हैं, भगवत आध्यात्मिक साक्षात्कार के जो तत्व होते हैं वो उजागर होते हैं। और क्योंकि जब गौ का दूध पीने से मानसिक तत्व जो होते हैं वो सात्विक होते हैं, इसलिए ब्राह्मण बुद्धि प्राप्त होती है। और जब ब्राह्मण बुद्धि प्राप्त होती है तभी जीव जो है वो शास्त्र अध्ययन कर सकता है और उसके आदेशों के अनुसार चल सकता है, तभी धर्म की स्थापना हो सकती है। वास्तव में गौ और ब्राह्मण को की सुरक्षा जब तक नहीं होगी तब तक इस संसार में धर्म की हानि होती रहेगी। इसे भगवान को कहा जाता है गौ ब्राह्मण हिताय से। भगवान गौ और ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए, उनका हित करने के लिए संसार में आते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। गाय और ब्राह्मण को जब कोई सुरक्षा प्रदान करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। हमें वास्तविक शांति प्रदान करने के लिए, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, भगवान को बहुत कृपा आती है क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत मासूम है। ब्राह्मण अपना संरक्षण करने के लिए कभी हथियार नहीं उठाता और गाय बहुत ही असहाय पशु है। वो सबका भरण पोषण करते हैं, गौ और ब्राह्मण सबको, गाय सबको दूध प्रदान करती है, ब्राह्मण सबको शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन दोनों स्वयं बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए उनको संरक्षण प्रदान करना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए परीक्षित, क्योंकि एक बहुत ही न्याय वाले राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे, इसलिए वो अपने इस राज्य में गौ और बैल के ऊपर अत्याचार नहीं बर्दाश्त कर सक रहे थे, इसलिए वो उनको सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, जब तक मेरा शासन है मैं आपके ऊपर जो भी अन्याय करता है उनको अवश्य दंड दूंगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैर साथ रहिएगा। बाकी के श्लोक हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अब से अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकूं। हरे बोल।